તારીખ 8-10-1994 શ્રી સમયસાર કલશ ટીકા શ્લોક નંબર 181 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 79.
મોક્ષ માને સર્વ પ્રકારથી દુઃખ મુક્ત હોના, જન્મ મરણ સે મુક્ત હોના, સભી પ્રકાર કે દૂષિત પરિણામો સે ભી મુક્ત હોના, ઉસી કો મોક્ષ કહેતે હૈ. और इनके नियमित रूप जो कर्मगण है उससे मोक्ष मिला, उसको भी मोक्ष कहते हैं. मोक्ष का कारण कैसा है? मोक्ष का कारण जैसा है वैसा नियम कहते हैं. नियम प्रज्ञा क्षेत्र आत्मकर्म उभय से અંત સંધિ બંને નિકટતે. આત્મા કે પરિણામો મે જિસ પ્રકાર કે મોક્ષ માર્ગ કી ખૂબી હૈ, યાને મોક્ષ માર્ગ કે જો અંદરૂની બાત હૈ, ઉસી કો આચાર્ય મહારાજ બતા રહે હૈ કે વસ્તુ સ્વરૂપ સે પ્રગટ હૈ. जो आत्मा के अनुभव, आत्मा के शुद्ध स्वरूप अनुभव समर्थ होने से परिणमा हुआ जीव का ज्ञान गुण वही है क्षणिक. वस्तु स्वरूप से ये बात प्रकट है कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप अनुभव समर्थपना जिसमें है, आत्मस्वरूप का अनुभव करने में जो समर्थ है, कौन समर्थ है कि जीव का ज्ञान गुण परिणमन करता हुआ जीव का ज्ञान गुण वही है क्षणिक. ज्ञान गुण माने ज्ञान अकेला नहीं कह करके ज्ञान गुण लिया है. यहाँ प्रज्ञा का अर्थ क्या है, ज्ञान ने क्या है, ज्ञान गुण क्या है. जो ज्ञान स्वयं का वेदन करता है, ऐसा जो ज्ञान का गुण है वही क्षणिक का रूप धारण करता है, उसको क्षणिक की उपमा दी जा सकती है. दूसरे प्रकार के ज्ञान को यहाँ क्षणिक प्रज्ञा क्षणिक नहीं कहते. ज्ञान है तो प्रज्ञा है, प्रज्ञा है तो ज्ञान है. किंतु यहाँ पर मोक्ष का कारणभूत प्रज्ञा कैसे होती है, मोक्ष का कारणभूत प्रज्ञा क्षणी कैसे होती है कि जो ज्ञान स्वयं का वेदन करता है, स्वसंवेदन रूप से वेद्य वेदक रूप से करता है, वही प्रज्ञा क्षणी बनती है, वही ज्ञान प्रज्ञा क्षणी है. किसी को ज्ञान पूर्ण कहते हैं, ऐसा ही ज्ञान का गुण है, आत्मलाभ करने का गुण है. जैसे हम कोई औषधि दवाई खाते हैं तो इसका गुण क्या हुआ कि रोग मिटा, ये इसका गुण है. वैसे ज्ञान का गुण क्या, ज्ञान का गुण वो कि वो राग को और आत्मा को भिन्न, बंध और आत्मा को भिन्न करे. कैसे भिन्न करें कि स्वयं के स्वसंवेदन से भिन्न करें. अपने स्वसंवेदन के अलावा राग से बंध से भिन्न होने का और कोई उपाय है ही नहीं. तिनकार तीन लोक में दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता. भावार्थ इस प्रकार है कि सामान्यतया जिस किसी वस्तु को छेद कर जो करते हैं तो क्षणिक के द्वारा करते हैं. जो कठिन पदार्थ है, लोहा जैसा पदार्थ होता है, लोहा होता है, सोना होता है, उसका टुकड़ा जब करने में आता है तो छेनी का प्रयोग करने में आता है। अपने गुजराती में इन्हें छेनी कहिए। यहाँ भी जीव कर्म को छेद कर दो करना है, यहाँ भी जीव कर्म का अनादि संबंध है, उसको भिन्न भिन्न करना है। उनको दो रूप से छेदने के लिए स्वरूप अनुभव समर्थ ज्ञान रूप छेनी है, उसको दो दो करना है। उनको दो रूप छेदने के लिए स्वरूप का अनुभव में समर्थ ऐसा जो ज्ञान है, ज्ञान गुण है, कोई ज्ञान रूप छेनी है, दूसरा कोई साधन नहीं है। जो ज्ञान स्वरूप का अनुभव करे यानी अपना अनुभव करे, वही कर्म से कर्मबंध को छेदन करने वाला ज्ञान है, कोई कर्मबंध से मुक्त होने वाला ज्ञान है। तीन काल तीन लोक में दूसरा कोई इलाज नहीं है, बंध से मुक्त होने का कोई इलाज नहीं है। और तो दूसरा कारण न हुआ न होगा, क्या लिखते हैं, भूत काल में अनंत काल में दूसरा कोई कारण हुआ नहीं मुक्त होने का, न हो गया भी अनंत काल में आने वाले। तो इससे क्या होता है कि जिसको मुक्त होना है उनको यही एक प्रयत्न प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारी पूरी शक्ति इसी काम में हमें लगा देनी चाहिए। दूसरे दूसरे प्रकार से हम कुछ मुक्त होने का इलाज करने जाएंगे तो असफल रहेंगे, निष्फलता और कुछ मिलने वाला नहीं है। जगत में जो कोई अनेक प्रकार के संप्रदाय है, अनेक प्रकार के मत मतांतर है, इसका यही कारण है कि सही उपाय को नहीं जान करके, सही उपाय के विषय में अनजाना रह करके अपने मति को प्राप्त है, विभिन्न प्रकार के उपाय को जो अजमाइश करते हैं लेकिन कोई सफल नहीं होते हैं। एक और दिन काल में परमार्थ का फल परम प्रयोजन मुक्त होने का है, इसका एक ही उपाय है। तो उपाय जो नहीं जानते हैं तो दूसरे दूसरे उपाय में लग जाते हैं या अपनी मति कल्पना से दूसरे उपाय को कर लेते हैं। कोई कहे कि हम शस्त्रास्त्र को पढ़े तो शस्त्रास्त्र को क्यों पढ़े, अगर विज्ञान नहीं करना है, नहीं होता है तो शस्त्रास्त्र की पढ़ाई किस काम की। हम तप करेंगे नहीं करें, उपवास करेंगे नहीं करें, तो अगर हम विज्ञान नहीं करते हैं तो ये तप और उपवास किस काम का। हम पूजा भक्ति करेंगे नहीं करें, अगर हम विज्ञान नहीं कर रहे, मुक्त होने का उपाय नहीं करते हैं तो ये पूजा भक्ति किस काम की। हम दया दान करते हैं वो करें कि नहीं करें, प्रश्न तो ये आता है कि जो कर रहे हैं वो करें कि नहीं करें। तो मुक्त होने का उपाय तो ये कि है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने में समर्थ ऐसे जो ज्ञान है वही एकमात्र उपाय है, उसी को करने के लिए जो कुछ करना है। तो ऐसा ज्ञान को तैयार करने के लिए जो कुछ करना है तो करो, उसको छोड़ करके जो कुछ करना है तो अनंत काल कर चुके हैं, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए हमारी समय शक्ति खरे उपाय में लगे और खोटे उपाय में नहीं लगे, इसलिए इसका प्रयोजन है, जानना इसका प्रयोजन है कि हमारा कोई भी प्रयास हो ये हमारे स्वरूप का अनुभव के लिए ही हमारा प्रयास होना चाहिए, दूसरा कोई हेतु होना नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि और तो दूसरा कारण न हुआ न होगा मोक्ष के लिए। ऐसी प्रज्ञा क्षणी जिस प्रकार छेद कर दो करती है उस प्रकार कहते हैं, तो प्रज्ञा छेने किस प्रकार से प्रज्ञमन करती है प्रज्ञा, उसी प्रकार को कहते हैं। तो आत्म कर्म उभयस्य अंतः संधि निपत बंधे निपतति, उतना पद प्राप्त करेंगे। आत्म कर्म उभयस्य, आत्मा चेतना मात्र द्रव्य, उसको आत्मा कहते हैं। चेतना मात्र द्रव्य को आत्मा कहते हैं। चेतना मात्र को छोड़कर जो राजादि परिणाम है, देहादि कर्मादि संयोग है, उसको हम आत्मा नहीं कहते हैं। चेतना मात्र द्रव्य को आत्मा कहते हैं। इससे सभी विभाव को छोड़ करके बात है। भले ही राजादि परिणाम आत्मा के अवस्था में है, फिर भी उसको आत्मद्रव्य नहीं कहते हैं। उसको यह बंध कहेंगे, उसको आत्मद्रव्य है तब नहीं कह करके बंध कहेंगे। आत्मा चेतना मात्र द्रव्य, कर्म पुद्गल का पिंड अथवा मोहराग द्वेष अशुद्ध परिणति, ऐसे हैं उभय माने दो वस्तु है। एक आत्मा चेतना द्रव्य है, कर्म पुद्गल का पिंड है वो दूसरी वस्तु है, अथवा कर्म पुद्गल का पिंड नहीं लेकर के मोहराग द्वेष अशुद्ध परिणति, दोनों एक प्रकार में लिए गए हैं। तो फिर भी वेद ज्ञान के प्रकरण में दोनों एक खाते में खटाना चाहिए। चंद्र कर्म है, भाव कर्म है, हमको तो दोनों से भिन्न होना है, तो दोनों को एक खाते में डालें। इसलिए हम व्यवसाय में हमारे अकाउंट में क्या करते हैं, मिसेलेनियस अकाउंट रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मिसेलेनियस का मतलब क्या है कि जो भी छोटे मोटे आधे आधे खर्च होते हैं डालो इसमें, डाल देते कि नहीं, ऐसे डालो इसमें, जिससे हमारा प्रयोजन नहीं है, यानी कि हम जिसको साथ में लेना नहीं चाहते हैं, तुम सबको एक ही खाते में रखो। तो पर के खाते में जाता है क्या? राजादि भाव जीव के परिणाम में होते हैं, लेकिन वो जाते हैं पर के खाते में जाता है। लेकिन कब जाता है कि जीव वेदज्ञान करता है तब, जहां तक वेदज्ञान नहीं करता है वो अपने खाते में खटाता है, मैंने राग किया, मैंने वो किया। का जो उचना वर्ग है उसमें 1005 नंबर का उचना वर्ग है। एक समय में मैं चिदानंद परिपूर्ण हूं ऐसी प्रतीति, ये भव के नाश का कारण है। भव के नाश का तो या मोक्ष का कारण है। यहाँ चेतना मात्र आत्मद्रव कहा है, तो चेतना मात्र को गुरुदेव अपनी भाषा में कहते हैं कि एक समय में, माने कौन से एक समय में? वर्तमान एक समय, वर्तमान समय में मैं पुरुषार्थ करता हूँ। किस प्रकार पुरुषार्थ करता हूँ? अभी ही वर्तमान में, अभी ही मैं चिदानंद परिपूर्ण हूँ ऐसी प्रतीति, जो भाव के नाश का कारण है। ऐसी प्रतीति होने के बाद अंतराग रहता है, ऐसी प्रतीति होने बाद ज्ञानी को भी अंतराग रहता है। तो पढ़ के पढ़ते पढ़ते मैंने पढ़ के पक्ष में जाता है, पढ़ के पक्ष में नहीं आता, तो पढ़ के पक्ष में जाता है। होता है जीव की अवस्था में, लेकिन वो पढ़ के पक्ष में जाते हैं, पढ़ के खाते पर खाते में जाते हैं, अपने स्वयं में वो खटाने में नहीं आता। कहते हैं कि आत्मा माने चेतना मात्र है, परिपूर्ण चिदानंद रूप परिपूर्ण है, कर्म बुद्धि का पिंड अथवा मोहराग द्वेष सिद्ध करेंगे, ऐसी है उभय दो वस्तु है, एक आत्मा और एक पर में सब लेकर द्रव कर्म भाव कर्म और मोह कर्म देना भी सब लेकर उनको यद्यपि एक क्षेत्रांग रूप है, क्या है शुद्ध करने से एक क्षेत्र रूप है, कर्म सिद्धल भी आत्मा के क्षेत्र में बैठा है, नौकर्म शरीर भी आत्मा के क्षेत्र के साथ है, मंद पर्याय रूप है, एक क्षेत्रांगार रूप है और संयोग संबंध भी है, बने बने संयोग संबंध है, स्वभाव संबंध नहीं है, स्वरूप संबंध नहीं है, संयोग संबंध है, जैसे मेहमान हो कितना भी बड़ा हो लेकिन आखिर में मेहमान वो मेहमान ही रहता है, आते हैं लड़की के ससुर हो ये बोलते हैं बहुत खाते प्रदार्थ करने में आते हैं, क्या सबसे ज्यादा घर वालों से भी ज्यादा, तो घर वालों के खाते प्रदार्थ करने का तो होता ही नहीं, उसका तो घर वाला नहीं रहता, पराया हो जाता है, फिर भी उतना बहुमान करने के बावजूद भी वो पराए हैं, वो पराए ही रहते हैं, अपने होते कि मेहमान है, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों मेहमान है, शरीर मेहमान है कि नहीं है, मुदत लेके आया है विदाउट नोटिस, कभी कोई नोटिस देता है कभी नहीं भी देता है, उसका कोई भरोसा नहीं, द्रव कर्म भी प्रति समय छूटता है, भाव कर्म भी प्रति समय छूटता है, तो आने जाने वाले पदार्थ है, ये अपना स्वरूप बिल्कुल नहीं है, भले ही एक क्षेत्रांगार रूप है, बंद पर्याय रूप है, अशुद्धत्व विकार रूप परिणमा है, कैसा है अशुद्ध पड़े से विकार रूप परिणमा है, तथापि परस्पर संधि है, संधि नहीं हुआ है, संधि मैंने जॉइंट है, साध है, बीच में सड़ंग नहीं है, नी संधि मैंने सड़ंग नहीं है, अगर एक द्रव्य रूप होता तो टुकड़ा करना मुश्किल हो जाता, लेकिन साध है वही तो इसकी कमजोरी है, यहाँ से वो टूटेगा टूटेगा, कोई संधि नहीं हुआ है, दो द्रव्यों का एक द्रव रूप नहीं हुआ है, वो तो हो ही रहा है हमेशा, राग भी आत्मा नहीं हुआ, कर्म के परमाणु भी आत्मा नहीं हुआ और शरीर भी आत्मा नहीं हुआ, हम कितना भी अपनत्व कर ले, हम कितना भी अपनत्व अनंत काल से कर करके अभी तक कर ही रहे हैं, फिर भी वो आत्मा होने वाला नहीं है, आत्मा रूप करने का हमारा पुरुषार्थ बेकार है, व्यथा है, दुखा है, मिथ्या है, और ऐसा पुरुषार्थ करने से भी उसमें सफलता नहीं होती तो दुखी होएगा, निष्फलता का दुख आई बिना रहेगा नहीं, जो संयोगी पदार्थ अनित्य है, उस अनित्य पदार्थ में निश्चितता का अगर हमें विश्वास है, प्रतीति है, तो यही प्रतीति यही विश्वास हमको दुख देने वाली चीज है, और अनित्यता में नित्यता स्थापित किया यही हमारी गलती है, बड़ी गलती है, इससे दुख होने वाला है, मैं एक समय में चिदानंद परिपूर्ण हूँ, बिना किसी के अभी ही पूर्ण हूँ, निरालंब निरपेक्ष हूँ, किसी के आधार अवलंबन की मुझे कोई जरूरत नहीं, ऐसा स्वयं का अवलंबन ले तो सुख मिलेगा, नित्य का अवलंबन है वो शांति का कारण है, सुखा कारण है। अनित्य का प्रतिष्ठित अवलंबन है दुखा कारण है, अशांति का कारण है। सीधा शांति अशांति का विज्ञान है। दो द्रव्यों का एक द्रव्य रूप नहीं हुआ है, ऐसा है जो बंध, ऐसा है जो संबंध। ज्ञान श्रेणी के बैठने का स्थान ये जो संयोग है, वही ज्ञान की श्रेणी को रखने का स्थान। यहाँ से दो टुकड़ा हो जाए, जैसे कोई कांदा वाली चीज हो पर दो टुकड़ा करना हो तो सांधे सांधे से करो तो आसान रहेगा। तो कमजोरी यहाँ है, इसकी कमजोरी है तो वहां है। ऐसा हो तो ज्ञान श्रेणी के बैठने का स्थान, उसमें ज्ञान श्रेणी बैठती है और बैठे हुए छेद कर भिन्न करती है। फिर प्रज्ञा क्या काम करती है, फिर अंतर्मुख होती है। प्रज्ञा अंतर्मुख होती है तो उनको बंद और ज्ञातमा साथ साथ रहे हुए संबंध रूप दिखते हैं और ये अंतर्मुख होकर के उनको अलग कर देती है, भिन्न अनुभव करती है। जो भिन्न अनुभव करता था वही ज्ञान अभी भिन्न अनुभव करने लगता है। कैसी है प्रज्ञा श्रेणी? ज्ञानावरणीय कर्म का सूक्ष्म होने पर, मिथ्यात्व कर्म का नाश होने पर, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अत्यंत पैठन समर्थ है। सीता मैंने क्या धारदार है, सबसे सीता है उसकी धार बहुत है, बहुत सूक्ष्म धार है, तो सूक्ष्म समझे में वो बराबर काम करती है, ऐसा कहते हैं। तो वो किस प्रकार करती है कि एक तो ज्ञानावरणी का सूक्ष्म होने पर संगनी पंचेंद्रिय जीव का ये कार्य है, और संगनी पंचेंद्रिय तक का सूक्ष्म ऐसे कार्य में लगता नहीं है। जो संगनी पंचेंद्रिय है उसको ज्ञानावरणीय कर्म का सूक्ष्म ऐसा है कि वो अपने प्रयोजन को ठीक तरह समझ सकता है। अपने प्रयोजन को मतलब सुख दुख के प्रयोजन को ठीक तरह समझ सकता है। ये मेरा सुख का कारण, ये मेरा दुख का कारण, गलती करे वो अलग बात है, लेकिन प्रयोजन को वो पकड़ता है, उसको कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म का सूक्ष्म होने पर। एक बात, अकेला ज्ञानावरणी का सूक्ष्म के काम नहीं करता। मिथ्यात्व कर्म का नाश होने पर, नाश मैंने उत्सम पहले उत्सम होता है, उत्सम को अनुदय भी कहते हैं, उदय का अभाव अनुदय, और उत्सम को अभाव भी कहते हैं क्योंकि उत्सम को उदय का अभाव हुआ है। तो जो मिथ्यात्व कर्म है या दर्शन वो है, मिथ्यात्व कर्म में दर्शन वो है और मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति भी है, दोनों एक साथ नाश होने पर अभाव होने पर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अत्यंत दर्शन समर्थ है। ऐसी दशा में शुद्ध चैतन्य को रखती है।
ज्ञान पराधीन हो गया, ज्ञान पराधीन हो गया, वो मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ, ज्ञान अपना काम करने में समर्थ नहीं हुआ।
तो उसमें क्या है कि पहले लिया ज्ञान का प्रयोग तो अपने में काम करने में समर्थ हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन क्या अकेला ज्ञान काम नहीं करता है। जब सुखोपयोग होता है तो ये साथ दो काम होता है, एक तो ज्ञान भी काम करता है और एक श्रद्धा भी काम करती है। इसलिए कोई ज्ञान का एकांत करे तो एकांत सही नहीं है, अगर कोई ज्ञान का एकांत करे तो वो ज्ञान सही नहीं है, तो ज्ञान जानकारी वाला हो जाएगा। एकांत ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, जानकारी वाला हो जाएगा, वो शास्त्र पढ़ते रहेगा, पढ़ते ही रहेगा। प्रसिद्धि का क्या? ज्ञान पूर्वक संधान हुई कि नहीं हुई, हुई एक काल में, लेकिन हुई कि नहीं हुई वो बात है। और विस्तार में तो वहां तक ले जाना आता है कि नीनता के काल में प्रसिद्धि होती है। सब प्रसिद्धि होती है पहले, जब स्वरूपता होती है तो प्रतीति होती है। तो श्रद्धा, ज्ञान और कार्यक्रम लिखा मैंने एका लिखा तो तीनों होता है। इसलिए जो धर्म की परिभाषा है, मोक्ष मार्ग की परिभाषा है, उसको समय दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं मोक्ष मार्ग कहने में आया है। इसलिए तो ऐसा कहे कि हमको श्रद्धा है इसलिए हम तो धर्म की प्राप्ति है, भले ज्ञान चारित्र नहीं हो तो बात गलत है। कोई कहे कि हमें ज्ञान है, बस ज्ञान है इसलिए हमें धर्म की प्राप्ति है, हम दूसरे की बात नहीं समझते, नहीं करें। ज्ञान के साथ प्रसिद्धि भी होती है और स्वरूप आचरण की लीनता भी होती है। कोई ऐसा कहे कि हमारा आचरण सिद्ध है, भले ही श्रद्धा ज्ञान हमको पचड़े में नहीं जाना है, हमको ध्यान के पचड़े में नहीं जाना है, वैसा है कैसा है, हमको तो हमारा आचरण शुरू कर लिया है, ऐसा भी नहीं होता है। तीनों एक साथ होता है, एक हो गए और दूसरा दो नहीं हो गए, या दो हो गए और तीसरा एक नहीं हो गए, ऐसा कभी नहीं होता। इसलिए कहा कि ज्ञानावरणी कर्म का सूक्ष्म होने पर और विख्यात कर्म का नाश होने पर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अत्यंत पैठन समर्थ है। भावार्थ जिस प्रकार है कि जिस प्रकार यद्यपि लोहा सार के क्षणी कति कनी होती है तो भी संधि का विचार कर छेदने पर छेद कर दो दो करती है। लोहा के छेनी पैनी होती है फिर भी संधि को देख कर उनको गुजरा करने में आता है। तो दृष्टांत है, ठीक उसी प्रकार यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण है। सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान कैसा है? अत्यंत तीक्ष्ण है, अत्यंत सूक्ष्म है। चाहे शास्त्र का सूक्ष्म मत हो ज्यादा, त्रिभुज मुनि जैसी व्यवस्थिति हो सकती है, लेकिन अंतर में सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वभाव है, उसको ग्रहण करने में वो सूक्ष्मता उसका उसकी सूक्ष्मता समर्थ है। स्वरूप ग्रहण सूक्ष्म ऐसा जो स्वरूप उसको ग्रहण करने में जो समर्थ है, यही सम्यक सूक्ष्मता है, यही स्वाभाविक सूक्ष्मता है। और ऐसी सूक्ष्मता सम्यक दृष्टि को अवश्य अवश्य होती है। ऐसा हो सकता है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है और विद्वान नहीं होता है। क्या समय दृष्टि ज्ञानी होता है और विद्वान नहीं होता है? और विद्वान होता है इसलिए कोई ज्ञानी होता ही है, ऐसा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं, ज्ञानी विद्वान भी होता है और विद्वान नहीं भी होता है। और विद्वान है वो ज्ञानी होता ही, ऐसा नहीं है कि विद्वत्ता आ जाए इसलिए ज्ञानीपना आ जाए, ये बात नहीं है। विद्वत्ता कोई अलग चीज है, ज्ञानीपना कोई अलग चीज है। तो इसलिए इसका स्पष्टीकरण होना जरूरी है कि जिसको इस विषय में पूरी नजर नहीं है या नजर अच्छी तरह तैयार नहीं हुई है, गुजराती मंत्री नजर केलवाणी नहीं, तो अगले का सूक्ष्म ज्ञान में व्यामोहित हो जाता है। देखो कितना ज्ञान है, बहुत समझता है और समझा भी सकता है, इसलिए ज्ञानी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इस तरह से ज्ञानी की पहचान होती, ज्ञानी के पहचान होने का एक दूसरा ही प्रकार है, और वो बात यह है चार को सत्र में लिया है कि ज्ञानी और अज्ञानी में उदय को एक स्तर से हो सकते हैं। विद्वान है इसलिए भी ज्ञानी है, ज्ञानी होने के बाद तीसरी होती है, इस तरह से ज्ञानी को समझाया जाता है। व्याख्या का यद्यपि संयम दृष्टि जीव का ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण है, थोड़ा तीक्ष्ण नहीं है, कितना है, अत्यंत तीक्ष्ण है। क्यों? स्वरूप के चिंतन वाला विकल्प है, सूक्ष्म विकल्प, जिसको शास्त्र में अंतर्कल्प कहते हैं, बहुत सूक्ष्म विकल्प होता है चिंतन का, आत्मस्वरूप का चिंतन का, फिर भी ये ज्ञान का पर्याय नहीं है, फिर भी ये आत्मभाव नहीं है, अन्य भाव है। कहां से पता चलता है कि जिसकी इतना सूक्ष्म ज्ञान होता है उसको पता चलता है, तो कसाई के एक कण को भी आत्मा में मिलावट करने देता नहीं, इतना सूक्ष्म ज्ञान है।
अंतर जल्द भी कर रहा हूँ, गुरु ना भेजा
मेरी
गुरु गुणी ना भेज दिया, अंतर जल्द माना था अंतर जल्द,
हाँ
गुरु गुणी ना भेज रही
है, गुणगुणी का भेद तो अंतर में जाता है, गुणगुणी का अभेद का विकल्प भी विकल्प है, भेद का विकल्प तो भेद रूप है ही, लेकिन अभेद का विकल्प मिले, मैं अभेद हूँ परिपूर्ण हूँ, फिर भी विकल्प विकल्प है तो आत्मज्ञान नहीं है, ज्ञान का प्रयोग नहीं है, कोई हाथ का प्रयोग। कितनी सूक्ष्मता भीतर में जिनको नजर आती है, तब वो बेध्यान करके हम लोगों को करने में समर्थ होता है, तो उनको इस तरह से अगर पहचाने कि अच्छा उतना अंदर में सूक्ष्म प्रकार से काम करने वाला ज्ञानी होता है, तो उसके परिणति देख करके उसको नमस्कार दे बिना रहेगा, क्या काम करता है भीतर, क्या अद्भुत काम करता है, इस तरह से वो पहचाना जाता है। कोई बात यह है कि पर जिन्हें साफ से ढूंढते ही नहीं रहते, कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण है, कैसा लिया, अत्यंत तीक्ष्ण है। भूमिका में जब से प्रयोजन के विषय में ज्ञान सूक्ष्म होता है, अधिक अधिक सूक्ष्म होते जाता है, सूक्ष्मता तो अपने प्रयोजन के विषय में पहले आती है, तो अप्रयोजन जो विषय को ग्रहण करता है, प्रयोजन जो विषय को मुक्त करता है, वहां से सूक्ष्मता की शुरुआत होती है, और वो सूक्ष्मता की शुरुआत आगे बढ़ करके परम प्रयोजन भूत अपना जो स्वरूप है उसको चिंतन के काल में भी तो ज्ञान का काल बोला जाता है, ध्यान करते हैं तो उसमें चिंतन चलता है। सूक्ष्म जो आत्म विकल्प है, आत्मा का विकल्प है, उसको भी वो ठीक कर देते हैं, ऐसा सूक्ष्म उपयोग हो जाता है, तो ऐसा प्रयोजन का दृष्टिकोण जो इतना सूक्ष्म हो जाता है, मनुष्य की भूमिका में अपनी भूमिका अनुसार का प्रयोजन देखना पड़ता है। अल्टीमेट जो प्रयोजन है वो तो वो है कि हम हमारे स्वरूप को प्राप्त करें और स्वरूप को छोड़ करके जो भी हमने अन्य प्रयोजन में भाव का अपने रूप ग्रहण हो रहा है उसका त्याग कर। ये तो एक अल्टीमेट प्रयोजन है लेकिन जिस भूमिका में हम खड़े हैं सब मनुष्य एक भूमिका में सारी भूमिका वाले होते नहीं, हरेक की योग्यता अलग अलग है। उपदेश तो शास्त्र में समष्टिगत होता है लेकिन शास्त्र पढ़ने वाले मनुष्य को व्यक्तिगत उपदेश को अलग छाटने की प्रक्रिया करनी चाहिए, चाहे वो स्वयं अपने आप करे या तो सामूहिक बैठक सत्संग के दौरान करें, करना वो पड़ेगा। क्या हम कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि दो जाने के उदय के उपदेश के उदय के विषय में विचार करते हैं तो गुरुदेव ने उनका उपदेश देने का उदय समझ के देखा तो जब वो प्रवचन करते थे तो सारे समाज सुनते तो किसी एक को एक को व्यक्तिगत उपदेश नहीं दे रहे, प्रवचन दिया गाथा का तो समाज में सुनने वाले एक साथ सैकड़ों हजार बैठे उसको समष्टिगत उपदेश का उदय कहते हैं। इस प्रकार का उपदेश बता था सब गोपालों ने उसको व्यक्तिगत उपदेश देने का उदय बताया और सभा भर के उपदेश नहीं देते थे लेकिन जो इनके परिजन में आए उनको व्यक्तिगत उपदेश देते थे आपको ऐसा मार्गदर्शन होना चाहिए जो उसकी योग्यता में वर्तमान योग्यता में जो बात थी उसमें से वो आगे ले जाते मार्गदर्शन दे जाते। अब हम विचार करेंगे दोनों बात से हमें इसका तात्पर्य निकाले उसका सार क्या निकालेंगे क्योंकि शास्त्र भी समस्त के रूप जैसे लिखा गया है व्यक्तिगत रूप जैसे भी निकाला जाता है तो तात्पर्य इसमें से क्या निकालना कि अगर हमें कोई ऐसा ज्ञानी मिले और व्यक्तिगत उपदेश का हमें लाभ प्राप्त हो तो ये तो बहुत परम सौभाग्य की बात है, ऐसा ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन जब समष्टिगत उपदेश का प्रश्न होता है सुनने का या शास्त्र सुनने का तो ये हमारी मनुष्य की जिम्मेवारी है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से हमें उपदेश हमारे लिए अलग छानना पड़ेगा। अगर ये कार्य हम नहीं कर पाते हैं तो हम कभी भी कितना भी स्वाध्याय करें सत्संग करें निष्फल हो जाएंगे। अगर हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए। देखिए दूसरे दूसरे हमारे समकक्ष मनुष्य हो उनको प्रार्थना करें विनती करें देखिए हमारे काम की बात कोई आए तो आप ध्यान दिलाना, हमारा ध्यान नहीं आए तो आप ध्यान दिलाना, हमारी योग्यता वैसी वैसी है अपनी योग्यता का निवेदन भी कर दें और साथ साथ इसी योग्यता के अनुकूल कोई बात हो पर ऊपर से जाती हो लक्ष्य नहीं जाता हो तो अपने जो सहयोगी होते हैं तो बता सकते। इस प्रकार से सत्संग किया जाता है, ऐसा नहीं कि गाथा लेकर के बैठे और पढ़ ले, ऐसे सत्संग इस प्रकार से प्रदान करते हैं। हमारा जो व्यक्तिगत प्रयोजन है और हम जहाँ जिस योग्यता में खड़े हैं इस योग्यता से एक कदम भी हम कैसे आगे बढ़े और बिल्कुल एक कदम भी कैसे पीछे नहीं जाना हो वो कैसे हो सकता है, उसकी सावधानी रख करके अगर हम सत्संग करते हैं तो ये सत्संग यथार्थ है। वरना नाम सत्संग का है लेकिन वहां यथार्थता का अभाव होता है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को सम्यक दर्शन होता भी है और नहीं भी होता है। जो यथार्थ अभ्यास करता है उसको होता है और होता ही है। जो अयथार्थ अभ्यास करते हैं उसको कभी भी सम्यक दर्शन होता नहीं, अभ्यास होता है सम्यक दर्शन नहीं होता है। ये बात अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम किस तरह से सत्संग करते हैं, किस हमेशा स्वाध्याय करते हैं। अगर हम पुराने ढांचे में से नहीं निकले, चाहे बात की विकृति तो हर प्रश्न में आती है, हर बात की विकृति आ सकती है। जैसे कि गुरुदेव को समस्त के उपदेश देते थे, तो किसी भी एक सांस में लेकर बैठते थे और अपने प्रवचन सुनाते थे सबको, लेकिन भीतर में वो अभिप्राय रखते थे कि मैं तो मेरी आत्मा का स्वाध्याय करता हूँ। लोगों को ऐसा दिखने में आता था कि गुरुदेव समाज को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या करते थे कि प्रवचन के माध्यम से वो अपना स्वाध्याय करते थे, मोटे से करते थे, बोलने में मोटे से करते थे। ये मुख्य बात थी, दूसरे को सुनना सुनाना हो गौण बात थी। अब हम ही नकल कर लें, हम ही गुरुदेव के स्थान पर बैठ जाए सबके हाथ से, पर हम भी प्रवचन करने लग जाए, दूसरे को उपदेश देने लग जाए, ये हमारा सत्संग का प्रकार ठीक है। हमको कैसे लाभ हुए, हमारा स्वाध्याय कैसे हुए, करना चाहिए। तो उसमें कहते हैं यद्यपि सम्यक दृष्टि जीव का ज्ञान अत्यंत तीक्ष्ण है, तथापि जीव कर्म की है जो भीतर में संधि, उसमें प्रवेश करने पर प्रथम तो बुद्धि गोचर छेद करता है। पहले तो वो बात बुद्धि में ज्ञान में आती है, तो हमने छेद किया, बुद्धि गोचर वो बात होती है। अध्यात्म का विषय बुद्धि गोचर है, ज्ञान गोचर है, प्रणाली रूप की तरह ज्ञान गोचर नहीं है, परोक्ष है, ऐसा नहीं है, प्रत्यक्ष है। प्रणाली रूप में बात आएगी कि ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति होती है, दर्शनावरण कर्म से होती है, लेकिन हमने तो न कर्म के परमाणु देखे, न प्रकृति देखी, न उनकी सत्ता देखी, न उनका उदय देखा, तो देखने में तो आता नहीं है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं। कर्म के परमाणु सदमस्त के ज्ञान में कभी आते हैं, ऐसा अध्यात्म में नहीं है, ये कहने का है। अध्यात्म में ऐसा नहीं है, अध्यात्म में तो हम बराबर बुद्धि को लगाते हैं, बराबर समझते हैं, समझ करके प्रयोग करते हैं, और प्रयोग में जो होता है उसका हमको ज्ञान समझ रहती है, हमारी बुद्धि बराबर उसमें कामयाब होती है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हमें क्या पता विज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम तो मैं आत्मा, मैं कर्म नहीं, मैं राग नहीं, मैं आत्मा, ऐसा हमको बार बार भाव आता है, लेकिन हम क्या जाने कि विज्ञान है कि नहीं, ऐसा नहीं है। विज्ञान होता है कि नहीं होता है, अंदर संधि में प्रज्ञाशनी जाती है कि नहीं जाती है, प्रवेश करती है कि नहीं करती है, हम नहीं जानते, ऐसा नहीं है, बराबर पता चलता है अपने को। इसलिए कहते हैं यहाँ कि प्रथम तो बुद्धि गोचर छेद कर जो करता है, पश्चात सकल कर्म का क्षय होने से साक्षात छेद कर भिन्न करता है, वो मोक्ष के काल में। कैसा है जीव, कैसा है जीव कर्म का अंतर संधि बंध, ये जो जीव कर्म का अंदर में संधि का बंध है, संबंध है, वो कहता है कि सूक्ष्म अति ही दुर्लक्ष संधि रूप है, दुर्लक्ष मैंने जल्दी से लक्ष्य में नहीं आए, इतना सूक्ष्म है, तो जिसको संधि नहीं दिखे वो तो ज्ञान के पर्याय को कैसे पटेगा, वहां संधि रूप बना करके संधि को दिखने में आने के लिए। तो जो ज्ञान स्थूल है उस स्थूल ज्ञान में अंदर की संधि जीव कर्म की दिखने में नहीं आती, जीव और बाप की संधि नहीं दिखाई देती, जीव को जिसको जीव राग की संधि दिखाई दे कोई भिन्न करने में समर्थ नहीं। यहाँ पर राजमल जी ने अंतर प्रयोग के लिए बहुत सूक्ष्म बात की है। क्या निरंतर प्रयोग की जो सूक्ष्म बात है तो उसी प्रकार के अंतर प्रयोग में जो कोई जीव आता है उसे समझ में आती है, वरना उसको लगता है कि ये संदर्भ में क्या होगा, ये सब बात कैसे होगी। जैसे दो पत्थर के बीच में एक लकीर होती है, ये तो रूपी है तो उसे उसका कलर दूसरा होता है। काले पत्थर होता है तो सफेद लकीर होती है, और आरस के सफेद पत्थर होता है तो कोई ब्राउन या ब्लैक कलर के लकीर होती है। तो पता चलता है कि यहाँ संधि है। तो यहाँ राग और ज्ञान के बीच में संधि कैसी है कि ज्ञान अंदर में उतने सूक्ष्मता को धारण करता है तो इसका पता चलता है, तो पता चलता है तो भिन्न कर सकता है, तो पता ही नहीं चले तो भिन्न कैसे करेगा। इतना ज्ञान सूक्ष्म उतने आत्मनिष्ठ की जरूरत लगे, जरूरत पूर्वक रुचि पैदा हो और रुचि से अपना प्रयोजन के पत्थर आए तो ज्ञान सूक्ष्म होता है। तो शास्त्र पढ़ने से ज्ञान सूक्ष्म हो जाता है ऐसा नहीं है, तो पहले बहुत अभ्यास किया इसलिए ज्ञान सूक्ष्म हो जाता है ऐसा नहीं होता है। तो ग्यारह लोगों को बड़े पद दिया इन लोगों ने, अनंत बार भूतकाल में अज्ञान भव को पढ़ लिया है, ज्ञान सूक्ष्म नहीं हुआ, अंदर में सूक्ष्म संधि भाषित नहीं हुई और वेद ज्ञान नहीं हुआ कभी, इसलिए धर्म की प्राप्ति कभी नहीं हुई। अब तक अभ्यास कुछ नहीं है, वर्तमान में जो मुख्य लोग अभ्यास करते हैं वो तो कुछ है, वो तो मामूली बात है। ग्यारह हम नौ पूर्व तक का पढ़ने पर भी अंदर में सूक्ष्म संधि नहीं पकड़ने में आए हैं तो काम होने वाला नहीं। ये तो दो परिणाम है, चैतन्य रूप आत्मा का परिणाम है, राग रूप है वो धर्म का परिणाम है। तो जीवन में देखे तक तो अवलोकन कर सकता हूँ, तो अवलोकन का जो प्रयोग है उसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी सुख होता है, उतनी प्रैक्टिस कम होगी तो आत्म की रुचि और जरूरत लगे तब उसको प्रारंभ नहीं, उतना प्रयोग चले, सतत प्रयोग चले, बहुत प्रयोग चले तो अंदर में ज्ञान सूक्ष्म होकर के बुद्धि को पता चलेगा। ऐसे बहुत अंदर जाने की बात है, ऊपर ऊपर की बात नहीं है, लेकिन एकदम अंदर जाने की बात है। ये खूबी है, मोक्ष पाने की कोई टेक्निक होती है, तो किस प्रकार की टेक्निक है इसका वर्णन करते हैं इस अध्यात्म शास्त्र में। जो वर्णन करता है, निरूपण करता है, तो इसी विषय से करता है कि अंदर में क्या क्या होता है, प्राप्ति होती है और इसका कैसा फल मोक्ष आता है। मोक्ष मार्ग पर हुए नहीं तो इसका फल मोक्ष आएगा भी कहां से, मोक्ष मार्ग ही नहीं आएगा तो मोक्ष रूपी फल आएगा कहां से, और मोक्ष मार्ग कब आएगा, ऐसा वेद ज्ञान होगा तो वेद ज्ञान ही नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग आने का सवाल नहीं होता। क्या कहा, सूक्ष्म माने अति ही दुर्लभ संधि रूप है, दुर्लक्ष संधि रूप है, उसका विवरण सूक्ष्म का विवरण करते हैं अभी। जल्दी लक्ष्य में नहीं आता है इसका वर्णन करते हैं, उसका विवरण इस प्रकार है कि जो द्रव कर्म है नाना वर्णादि प्रतियोगिता से है, वो यद्यपि एक क्षेत्रावधार रूप है, आत्मा और उसका क्षेत्र आकाश के अपेक्षा से एक है, अपने द्रव की अपेक्षा से एक नहीं है। एक क्षेत्रावधार का मतलब क्या है, कि आकाश से जिस प्रदेश में जिस क्षेत्र में जीव रहा है उसी क्षेत्र में कुर्म का प्रतिबिंब भी रहा है, कर्म परमाणु रहा है, लेकिन कर्म में आत्मा नहीं, आत्मा में कर्म का क्षेत्र अलग अलग है। यहाँ तो निमित्त की अपेक्षा से एक क्षेत्र अलग अलग है, आकाश का निमित्त है, यद्यपि उसकी तो जीव से भिन्न बने की प्रतीति विचारने पर उत्पन्न होती है, इसका विचार करने पर विश्वास आता है कि हमको भी कर्म का संबंध है, कर्म का उपयोग कर्म में आता है, हम जुड़ जाते हैं और श्रद्धादि भाव हो जाते हैं, तो उसकी प्रकृति उड़ जाती है अंदर में, जिनके परिणाम बन जाता है व्यवहार में क्रोध गुस्सा हो जाता है, तो विचार करने पर तो काल में आता है, विचारने पर उसकी प्रतीति आती है, विश्वास आता है, ज्ञान आती है। कारण के द्रव कर्म और पुद्गल पिंड रूप है, यद्यपि एक क्षेत्र एक क्षेत्रांगार रूप है तथा भिन्न भिन्न प्रदेश है, कर्म का प्रदेश भिन्न, आत्मा का प्रदेश भिन्न, प्रदेश मैंने क्षेत्र, परमाणु का क्षेत्र अलग है, चैतन्य आत्मा का क्षेत्र अलग है, उपादान रूप से अलग अलग क्षेत्र है, पर निमित्त रूप से एक क्षेत्र है, तथा भिन्न भिन्न प्रदेश है, अवचेतन है, बंधता है, सुनता है, पुत्र परमाणु बंधता है, छुप जाता है, नया नया आता है, पुराना चला जाता है, ऐसा विचार करने पर भिन्नपना के प्रकृति उत्पन्न होती है। एक कर्म पुद्गल के विषय में भिन्नपना की प्रकृति विचार का विषय होता है, अनुभव ज्ञान का सीधा विषय नहीं, दिखता नहीं। दूसरा नौ कर्म जो शरीर मन वचन उससे भी उस प्रकार से विचारने पर भिन्न प्रकृति उपजती है, ये भी सुंदर परमाणु है और हमारे आत्मा चेतन देव है, चेतन चेतन ये तो सकते नहीं, इसलिए उनके भी भिन्न बना के प्रकृति हो सकती है। तीसरा भाव कर्म जो मोहराग्वेश अशुद्ध चेतना रूप परिणाम, क्या कहा, मोहराग्वेश अशुद्ध चेतना रूप परिणाम, अशुद्ध चेतना है वो, तो केवल शुद्ध ऐसा नहीं है, अशुद्ध चेतना रूप परिणाम, तो अशुद्ध परिणाम वर्तमान में जीव के साथ एक परिणमन रूप है, ऐसा अशुद्ध परिणाम जीव के साथ एक मेघ रूप हो रहा है, तथा अशुभ परिणाम के साथ वर्तमान में जीव व्याप व्यापक रूप परिणमता है, राज स्वयं करता है, जीव राज को दूसरा प्रदान करता है ऐसा नहीं है, जीव स्वयं करता है, उसमें व्याप्त रहता है, इस कारण उन परिणामों का जीव से भिन्न पड़ने का अनुभव कठिन है। ऐसी परिस्थिति में जीव को इससे भिन्न पड़ा करने का जो अनुभव करना है वो कठिन पड़ता है, तो कठिनाई को ज्ञानी जानते हैं कि किस प्रकार के भीतर में कठिनाई है, तथापि वो हो सकता है, तथापि करके इस बात को परंतु कर सकते हैं, चारित्र गुण का परिणाम है, जीव के चारित्र गुण का विकारी पर्याय है, तो उसमें जीव की एक न्याय से व्याप्ति है, अगर सर्वथा जीव की व्याप्ति नहीं होती तो अशुद्ध चेतना नहीं बोली जाती, शुद्ध है लेकिन है तो चेतना, क्या शुद्ध होने पर भी है तो चेतना, अशुद्ध चेतना, जैसे शरीर की अवस्था है उसमें रोग आया शरीर का, तो है तो शरीर की अवस्था, शरीर के परमाणु व्यापे हैं इसमें, व्यापे व्यापक रूप में दूसरे पर दूसरे के शरीर के पर व्यापक, उसी शरीर के व्यापक स्वभाव नहीं व्यापक होता है, लेकिन जीव तो व्यापक होता है। जीव का स्वभाव नहीं व्यापक होता, लेकिन जीव तो व्यापक होता है।
हाँ, ऐसी बात है। थोड़ा विस्तार कर लेकर हो चुका है, थोड़ा और विस्तार कर।